Alright, जी, once again, welcome back. और मैं क्या बताऊँ आपको कि क्या है, मैं I'm tied up and so tied up that मुझे कभी कभी लगता है कि पता नहीं एक zombie वाली जिंदगी मेरी. क्या हाल चाल है आप लोग, आप लोग ठीक ठाक हैं? Yeah, I'm all right. And मुझे लगता है कि अगर रेडियो ना हो मेरी जिंदगी में तो बहुत खामोशी हो. I've got no idea why. लेकिन सिर्फ काम 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 और सिर्फ काम, यही काम है, इसके अलावा कोई और काम नहीं. हालात क्या है आपके, आप बताइए. आज मेरा दिल तो चाह रहा है मैं बहुत पॉलिटिकल शो करूं, मतलब देयर इज सो मच टू टॉक अबाउट. देयर इज जहांगीर तरीन साहब, ही इज अनाउंसिंग हिज पार्टी, यू नो आपको पता ही है, अलीम खान साहब जो हैं वो उस पार्टी के सदर बन गए हैं, फिरदौस आशिक खान साहब जो हैं वो वजीर इत्तलात हैं, उनको इत्तलात का कलमदान जो दिया है वो दिया गया उस पार्टी के अंदर. एंड देन ऑफकोर्स उसके रूह रमा जो है वो जहांगीर तरीन साहब हैं. आई वांट टॉक अबाउट कि जी अगर ये पार्टी आ भी जाती है, और जाहिर है यू नो हर तरह से कोशिश की जा रही है, समझिएगा बात को, हर तरह से कोशिश की जा रही है कि लोग जो है जहांगीर तरीन साहब की पार्टी को शामिल, उसमें शामिल हो जाएं. ये बिल्कुल उसी तरह से जब खान साहब की पार्टी को बनाया गया था, तश्कील दिया गया था, बिल्कुल उसी तरह से तश्कील दिया जा रहा है इस पार्टी को भी. ये कितना सदर पंजाब की हद तक तो ये पार्टी बहुत अच्छा करेगी, लेकिन जब सेंट्रल अपर पंजाब की बात आती है तो वहाँ मुश्किल हो सकती हैं. एंड खासकर जो अर्बन एरियाज के अंदर हैं, और ये इस पार्टी के अंदर जितने भी लोग जा रहे हैं, यूजली जिन नामों को मैं पढ़ रहा हूँ वो सारे इलेक्टेबल्स हैं, तो वहाँ तक तो बात ठीक है. वो इतना क्लाउड जहांगीर तरीन साहब का भी है और उनकी पार्टी का भी होगा कि वो इलेक्टेबल्स को तो इलेक्ट करवा दें, तो ये तो यहाँ तक तो बात सही है. लेकिन ये रूरल पाकिस्तान के अंदर होता है, अर्बन पाकिस्तान के अंदर जहाँ इलेक्टेबल से कहीं ज़्यादा जो होता है वो पार्टी का अपना उम्फ होता है, अपनी अपनी ताकत होती है, तो वहाँ ये पार्टी क्या करेगी, येट टू बी सीन. आई एम नॉट सेइंग कि यू नो ऐसा होगा या वैसा होगा, आई आई डोंट नो. दूसरी तरफ यू नो वी डोंट एग्जैक्टली हाउ तहरीक इंसाफ इज़ गोइंग टू सेटल दिस, बिकॉज माइनस इमरान खान साहब की तैयारियाँ हैं, एंड लेट्स सी कि वो कहाँ तक यू नो कामयाब होता है. अच्छा, ऐसा नहीं है कि उसके बगैर पार्टीज जो होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं. नवाज शरीफ साहब की पार्टी जो है उसकी मिसाल आपके सामने है, इट वॉज माइनस नवाज शरीफ साहब, बट देन उनके पास जो एक अच्छी बात थी वो ये थी, जो उनके हक़ में बहुत बेहतर साबित हुई है, वो ये थी कि शहबाज शरीफ साहब वॉज देयर, और शहबाज शरीफ साहब मुख्तलिफ पार्टीज को भी एक्सेप्टेबल थे, साथ साथ एस्टेब्लिशमेंट को भी एक्सेप्टेबल थे. शहबाज शरीफ साहब के बात में बारे में ये कहा जाता है कि तमाम वो जो स्टेक होल्डर्स हैं वो शहबाज शरीफ साहब के साथ काम करना बहुत पसंद करते हैं, बिकॉज ही इज़ वेरी फ्लेक्सिबल. एट द सेम टाइम यू नो, और जाहिर है वो उनका ब्लड थे, तो इवन दो के नवाज शरीफ साहब जो बाहर रहे तो रहे, लेकिन आज भी उनकी जो हैसियत है वो सुप्रीम प्राइम मिनिस्टर की है. प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, बट देन सुप्रीम प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब, बिकॉज फैसले जो होते हैं वो वहीं से होते हैं. एनीवे ये तो था, लेकिन खान साहब के पास ऐसी कोई लेगेसी है नहीं. खान साहब के पास जो चॉइसेस हैं उसके अंदर एक तो परवेज इलाही साहब की चॉइस है, विच आई डोंट थिंक कि खान साहब, चाहे मुनस इलाही साहब कितना ही कह लें या परवेज इलाही साहब कितना कह लें, बट आई थिंक खान साहब का एक ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो उनके साथ बहुत ज़्यादा है. दूसरी चॉइस इनके पास परवेज खटक साहब की है. पार्टी छोड़ने का ऐलान उन्होंने नहीं किया, सिर्फ वजारतें छोड़ने का ऐलान किया, तो आई डोंट नो हाउ मच ही इज़ गोइंग टू ट्रस्ट परवेज खटक साहब, क्योंकि खटक साहब के बारे में भी कहा जाता है उनका जो टेम्परमेंट है वो बहुत ज़्यादा खान साहब से मिलता जुलता है, एंड ही इज़ वन ऑफ दोज पीपल जो बड़े वोकल थे चीज़ों को खान साहब को बताने में, तो आई डोंट नो हाउ मच खान साहब उन पर ट्रस्ट करेंगे. देन ऑफकोर्स यू नो देर इज जनाब असद उमर साहब, आई डोंट नो हाउ मच you know he would have a clout outside Tehreek Insaf. I don't know. Last but not the least, it is Shah Mahmood Qureshi saab. Shah saab of course is electable, lekin issue Shah saab ka bhi wahi hai, unless and until Khan saab endorses him to Shah saab jo hai wo kar nahi payenge, bahut zyada kuch kar nahi payenge, even though ke jo likely choice hai wo Shah saab ki hai, but let's see how's going to happen. अभी तो ये बाजगश्त रहेगी, आगे पीछे फैसले होंगे, आएंगे जाएंगे, पता चलेगा कौन है. खान साहब शायद ऐलान कर दें, फिर उसको रिट्रैक्ट कर लें. मैं आप देखिएगा आगे ये अगले चंद दिन जो है ये बड़े बड़े इंपॉर्टेंट होने वाले हैं पाकिस्तान के लिए. दूसरी तरफ एक बड़े मजे की बात हुई है कि जी मुझे नहीं पता बजट आएगा IMF के बगैर आएगा तो यू नो कमाल हो जाएगा. हुकूमत ने ये भी तजवीज़ दी है कि जी 8 बजे बाजार बंद कर दें. ताजिर कह रहे हैं जी नहीं बंद कर सकते 8 बजे, एक तो वैसे ही कारोबार नहीं है, ऊपर से 8 बजे बंद कर देंगे तो क्या होगा, एनर्जी की सेविंग होगी, ताजिरों को थोड़ा सा नुकसान होगा, बट देन दैट्स हाउ इट्स गोइंग टू हैपन. मुझे नहीं लगता कि ये बात मानी जाएगी किसी तौर पर भी, ताजिरों को काबिल कबूल नहीं होगी. बहुत सारी चीज़ें जो पाकिस्तान के अंदर हो रही हैं, असल में प्रॉब्लम क्या होता है, जब आप बहुत बड़े बड़े बोल बोलते हैं ना, बहुत बड़ी बड़ी चीजें करते हैं, तो फिर इस तरह की बात होती है. पीडीएम ने, देखिए आप लोगों को याद है, मैं किसी के खिलाफ नहीं बात कर रहा, बट पीडीएम ने महंगाई मार्च किया था, और ये जो मार्च था महंगाई का, ये इसीलिए किया गया था कि खान साहब के दौर हुकूमत में बड़ी महंगाई थी. अच्छा, अगर ये कहा जाए कि अगर खान साहब की हुकूमत रहती तो क्या ये हालात नहीं होते, हालात ऐसे ही होते, बिकॉज खान साहब की हुकूमत जो थी वो भी यू नो आईएमएफ की तमाम शराइत को पूरी नहीं कर पा रही थी, बल्कि उन्होंने तो एक बाकायदा उनका बाज़ाब्ता प्लान था, जिसके बाद बहुत सारी चीज़ें जो थी वो खान साहब के लिए भी बड़ी मुश्किल हो जाती. लेकिन एक मौका ज़रूर खान साहब के पास आया था. आई थिंक खान साहब डिड नॉट प्ले हिज कार्ड्स राइट, मुझे ऐसा लगता है, और जो उनके मुशीरान थे उन्होंने बड़ा किरदार अदा किया सिलसिले में. पीडीएम ने ये सारी बल्ली जो थी वो अपने गले के अंदर डाल ली थी लिटरली. ये खान साहब के लिए बड़ा बेनिफिशियल था वो जो तहरीक अदम एतमाद आई थी, और खान साहब को साइडलाइन कर दिया गया था. अगर खान साहब चुप रहते तो आज ये सारा का सारा मलबा जो था, सारा का सारा मलबा जो यू नो बैड इकोनॉमी का मलबा है, वो सारा का सारा पीडीएम पे गिर सकता था. लेकिन खान साहब जाहिर है वो आउट ऑफ एक्शन तो रह नहीं सकते थे, और ये उनकी नेचर में नहीं है कि वो चुप रहे. ही इज वेरी वोकल अबाउट थिंग्स, तो उन्होंने बोला है. और मजे की बात है, जो सबसे गलत बात हुई वो इस सिलसिले में ये हुई कि आसपास के जितने लोग थे जो उनके मुशीरान थे, उन्होंने खान साहब को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी. और वो जो इन्फ्लुएंस था खान साहब का आसपास के लोगों का, वो आज तहरीक इंसाफ को एक ऐसी बंदगली में ले आया है जहाँ प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं. अब अगर तहरीक इंसाफ को सर्वाइव करना है तो मानस बन के फॉर्मूले पर जाना है, और मानस बन के फॉर्मूले पर जाना है तो इमरान खान साहब को ट्रस्ट करना पड़ेगा किसी न किसी पे. अब उसके बाद क्या होता है, नो वन नोज, बिकॉज यहाँ पर मसाइल है. अब क्या ऐसा होगा कि बाहर से खान साहब अपने कासिम को बुला सकते हैं और लोगों को बुला सकते हैं, देन यू नो स्लोली एंड ग्रेजुअली इंक्लिकेट कर सकते हैं पॉलिटिक्स के अंदर, बट देर वेरी वेरी यंग, वेरी वेरी यंग, एंड आई डोंट थिंक ही वुड वांट दैट. तो मेरे ख्याल में वो तो ऑप्शंस जो है सद खान साहब के पास लिमिटेड हैं. मैं अभी भी ये कहता हूँ कि अगर वो अपनी एडवाइजरी को चेंज कर लें, और मुज़ाकरात के लिए बहुत लेट हो गया, अब मुज़ाकरात नहीं हो पाएंगे. एक सूरत और भी हो सकती है, जेन्युइनली जो जो चीज़ गलत हुई है खान साहब ओपनली उसको एक्सेप्ट करके अपोलोजाइज कर लें, तो मेरे ख्याल में वो भी एक चीज़ ऐसी है जो खान साहब को दोबारा से मुज़ाकरात की टेबल पर ला के बिठा देगी. और मेरे ख्याल में अगर खान साहब को बहुत मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे, बिकॉज आई नो इट्स नॉट इन हिज नेचर टू डू दिस, और मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है जब आपने एक बयानिया बिल्ड किया हो और वो कदम कदम पे गलत साबित हो जाए, येट आपके लोग उसको फॉलो कर रहे हो, उसके बाद आपको रिट्रैक्ट करना पड़े दोबारा से. बताएंगे ना, खान साहब हैज़ टू रिमेंबर दिस के एक ऑब्लिगेशन उनकी उन वर्कर्स के साथ है, उन तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ है जिन्होंने खान साहब पे ब्लाइंड ट्रस्ट किया, और वो उनके अलावा किसी को नहीं देखना पसंद करेंगे. ये मेरा अपना तजिया, मुझे नहीं पता कि बाकी लोग क्या समझते हैं, मुझे नहीं लगता खान साहब के अलावा वो किसी को भी देखना पसंद करेंगे उस रोल के अंदर जिस रोल के अंदर खान साहब थे. तो खान साहब को आइंदा आने वाले चंद दिनों में बहुत मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे, और इसमें जो सबसे लॉजिकल फैसला मुझे लगता है जो खान साहब के लिए, मेरे ख्याल में अगर मैं खान साहब से बात करता तो मैं तो हर तरह से कोशिश करता कि मुज़ाकरात करें, हर तरह से कोशिश करता कि खान साहब ये कहें कि नो मुफाहमत का कोई भी रास्ता जो है, कोई भी शर्त जो है वो उसको वो माने. अभी फॉर द टाइम बीइंग दो तीन साल दोबारा से रीबिल्डिंग के अंदर इसको लगाएं तहरीक इंसाफ को. तहरीक इंसाफ में कुछ बहुत अच्छे लोग हैं मेरे ख्याल में. ही हैज़ टू गो बैक टू पीपल यू नो हु बिलीव्ड इन द शेयर मैनिफेस्टो ऑफ तहरीक इंसाफ, जिसके अंदर और ये रबिश बातें ना करें, ये लॉन्डे जो वो जो होते हैं ना, हमारे एक बहुत बड़े एंकर हैं मंसूर अली खान साहब, मैं उनको बहुत बहुत पसंद करता हूँ, बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, बहुत बैलेंस बात करते हैं वो. एक लफ्ज़ यूज़ करते हैं लॉन्डे लपाड़ों का, तो वो उससे दूर रहें खान साहब, और ग्राउंड रियलिटीज़ पे बात करें. देखिए ग्राउंड रियलिटीज़ बहुत मुख्तलिफ होती हैं. कीबोर्ड वॉरियर्स आपको कहाँ हैं, वो सारे कीबोर्ड वॉरियर्स वे आर दे, और अगर ये बयानियाँ दोबारा बिल्ड करेंगे ना, बिकॉज ये तो बड़ा बड़ा खलीस किस्म की बात है जो लोग स्प्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं कि खवातीन के साथ ज्यादती हो रही है फला फला ये सब, और वो आहिस्ता आहिस्ता सारे लोग आके बयान उसके एंटी दे रहे हैं. देखिए ये चढ़ते सूरज के पुजारी होते हैं लोग. खान साहब बंद गली में आए, सारे भाग गए. ये वही लोग थे जो खान साहब भाग के खान साहब की पार्टी में आते, बिकॉज खान साहब का सूरज चढ़ा हुआ था. अब खान साहब को तो अंडरस्टैंड करें इस बात को, खान साहब को अब ये बात समझना पड़ेगी कि इनको दोबारा से रीबिल्डिंग पर जाना है, पूरी पार्टी की रीबिल्डिंग पर जाना है. अगर खान साहब उस पार्टी की रीबिल्डिंग पर नहीं गए तो याद रखिए शदीद नुकसान होगा. बट दैट्स माय टू सेंस. आगे आने वाले दिन बड़े मुश्किल हैं. ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट वी आर स्ट्रगलिंग एंड स्ट्रगलिंग बैड. struggling really bad. I don't know how it's going to happen. मुझे नहीं लगता कि इसहाक डार साहब इसमें कामयाब हो सकेंगे. जो कुछ वो कह रहे हैं उसका रीजन ये नहीं है कि इसहाक डार साहब के सलाहियतों पे मुझे शुबा है. नो, आई डोंट थिंक सो. बट एक बेसिक मिस्टेक जो पीडीएम की तरफ से हुई है वो ये हुई है कि उन्होंने वादे बहुत सारे किए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि उनको दो तीन चीजों ने मारा है. एक तो पूरी दुनिया पे इस वक्त कहीं ना कहीं रिसेशन जरूर है, स्लोली एंड ग्रेजुअली देयर गोइंग टू गेट आउट ऑफ इट, लेकिन रिसेशन जरूर है. दूसरी बात यह है कि वो डिफॉल्ट जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत के अंदर ऑलरेडी हो चुका था, वो मिसट्रस्ट जो क्रिएट हुआ था आईएमएफ के साथ, अब किसी तौर पर वो सुलझने पर नहीं आ रहा है. अच्छा, फिर दोस्त ममालिक जो है अब उन्होंने फिक्र करना शुरू कर दिए, बिकॉज चाइना इज द मोस्ट सुप्रीम इकोनॉमी दैट्स गोइंग टू बी देयर इन बाय नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स. अगले दो साल के अंदर आप देख लीजिएगा चाइना जो है वो सरपास करेगा यूएस को, और अगर चाइना सरपास करता है यूएस को तो बहुत सारी कंट्रीज जो इस वक्त इंक्लाइन है यूएस की जानिब वो एंटी यूएस हो जाएंगे. फिर एक और चक्कर जो है, चाइना अपनी करेंसी को लॉन्च कर रहा है यू नो वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे, और आप याद रखिएगा कि जिस दिन ट्रेडिंग उसके अंदर शुरू हो गई उस दिन डॉलर को एक बहुत बड़ा धक्का लगने वाला है. तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होने वाली हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स पे या उसके प्लेटफॉर्म पे, जो जहां पाकिस्तान अब एक खामोश तमाशाई बना देख नहीं सकेगा और मदद को पुकार नहीं सकेगा किसी को. हमें कुछ चेंजेस अपने एसेंशियल यू नो स्ट्रक्चर के अंदर करनी पड़ेंगी, और हमें बात करनी पड़ेगी, अपने दोस्त मुल्कों के पास जाना पड़ेगा, और प्रोजेक्ट्स के बदले डील्स बनानी पड़ेंगी. याद रखिएगा, प्रोजेक्ट्स के बदले. अब इसकी इम्प्लीकेशन आप खुद समझिएगा, मैंने आपको सिर्फ एक इशारा दिया. प्रोजेक्ट्स के बदले डील बनानी पड़ेंगी. दूसरी सूरत हाल ये है कि हम कौम जो है वो तीन साल यू नो लोहे के चने चबा के गुजारा करें, और ग्रास रूट लेवल पर जाके कोई भी हुकूमत हो वो टेक्नोक्रेटिक हो, और अगर इलेक्शंस होते हैं जो कि मुझे होते नजर नहीं आते, आई डोंट थिंक इलेक्शंस आर गोइंग टू हैपन. पीडीएम का भी बहाना यही हुआ कि जी इकोनॉमिक की सिचुएशन इतनी बुरी है, तो अगर कोई ऐसा यू नो या तो इसी गवर्नमेंट को चलाया जाता है या कोई टेक्नोक्रेटिक सेटअप आता है जिसकी चांसेस बड़े कम है, आई थिंक इसी को एक्सटेंड करेंगे वो, तो फिर इनको एडवाइजर्स चेंज करके ग्रास रूट पे जाके चेंज करना पड़ेगा, और ग्रास रूट लेवल पर जाके जो इकोनॉमिक डिप्रेशन है उसको एड्रेस करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको इंडस्ट्रीज को यू नो थोड़ा सा लीवेज देना पड़ेगा, बिजनेसमैन को लीवेज देना पड़ेगा, बिजली जो है वो सस्ती करनी पड़ेगी. अब ये सब कैसे करेंगे, बिकॉज यू एग्जैक्टली नो कि सब कुछ हो नहीं पाएगा. उसकी दूसरी ऑप्शन ये है, अगर मैं यू नो कहीं कोई मुझसे मशवरा करे तो मैं उनको ये बताऊंगा कि हम ऑल्टरनेटिव एनर्जी की तरफ जाएं, उसके अंदर उसके स्ट्रक्चर को खड़ा करने में 12 से 18 महीने लग सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपके लिए आसानियां बहुत पैदा हो जाएंगी, आप नेगोशिएटिंग टेबल पे आ जाएंगे, बिकॉज दुनिया के बहुत सारे बेशतर ममालिक ऐसे हैं जहां बहुत कुछ कर सकते हैं, बट इशू ये है कि यहां पर देखने वाला कौन है, सुनने वाला कौन है, कहने वाला कौन है, तो ये बस अल्लाह ही मालिक है. बट दिस इज माय टू सेंस. मैं आपको बोर नहीं करूंगा इस बात से कि मैं क्या बात कर रहा हूं और क्या नहीं कर रहा हूं. अगर यू डोंट अग्री विद मी दैट्स फाइन, डोंट अग्री, ये मेरे अपने यू नो आई जस्ट थिंक दैट्स व्हाट इट इज. But here's what we're going to do. We're going to play this song, a chote sa break, aur uske baad baat karte hain aur aapki calls bhi lete hain. Aur thoda mazey ki call karenge yaar, bahut depression ho gaya, bahut tension ho gayi. Ko mazey ki call lete hain, ko mazey ka topic rakhte hain. All right, ladies and gentlemen, once again, welcome back. And kuch baatein kar lein, kuch achhi pyari pyari si baatein kar lein. Sure, yaar. I don't know. Mujhe lagta hai ki hum agar mehngai ke bare mein baat karte hain to bahut sare log call karenge. Agar hum politics ke bare mein baat karte hain to bahut sare call karenge. Aaj kuch फेवरेट सिंगर्स के बारे में बात कर लें. सुनो, आपका फेवरेट सिंगर कौन है? आई डोंट नो, आई जस्ट कुछ थोड़ा डिफरेंट करना चाहिए. एंड देन इफ यू वांट टू टॉक अबाउट पॉलिटिक्स यू कैन. यू नो, अगर आप पॉलिटिक्स के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो आप कह दीजिएगा, लेकिन आज मेरा आपसे सवाल सिर्फ यही होगा, आपका फेवरेट सिंगर कौन है? दैट्स इट. और प्लीज खुदा का वास्ता को फलसफा मुझे मत सुनना प्लीज. हम सब अपने अपने तौर पर बहुत फलसफी हैं, कोई फलसफा नहीं सुनना मुझे, सिंपल सी बात है. उसके अलावा आप जो करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो वो आप जरूर कीजिएगा, ठीक है? और अगर आप किसी पुराने टॉपिक पे बात करें तो, लेकिन मैं आपसे मजे से शो करना चाहता हूँ, मजे से बात करना चाहता हूँ, आई वांट टॉक टू यू, आपको जानना चाहता हूँ ना मैं. तो मेरा सवाल ये, आपका फेवरेट सिंगर कौन है? दैट्स इट. या कौन था या कौन हो, मतलब है, दैट सॉर्ट. इंडिया, पाकिस्तान, वेयर एवर, हॉलीवुड, बॉलीवुड, लॉलीवुड, वेयर एवर, आपने बताना है आपका फेवरेट सिंगर कौन है. 021-111-637-236 आपको यहाँ कॉल करने का नंबर. अस्सलाम वालेकुम.
वालेकुम अस्सलाम.
असगर भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप?
बस अल्लाह का शुक्र है. फेवरेट सिंगर की बात है तो मैं, एक तो आपको पता है तलत महमूद
साहब, वाह वाह.
और हाल में सज्जाद अली, उस दिन हम डिस्कस करना भूल गए, बेहतरीन, सुरीला,
क्या बात है. सज्जाद भाई तो
उसकी अपनी है,
सज्जाद भाई तो कमाल है।
अच्छा, मैं अगर अगर नागवार ना गुजरे तो मैं पॉलिटिक्स पे दो या दो मिनट ले लूं।
हाँ बोलिए बोलिए, वो तो मुझे पता है सभी लेंगे।
बात ये है कि ये इलेक्शन होंगे।
अच्छा,
मेरी बात इलेक्शन होंगे और टाइम पे होंगे
अक्टूबर में।
बुनियादी वजह है, उसकी बुनियादी वजह फलसफा नहीं है, हकीकत है कि जिसका नाम है ना आसिफ अली जरदारी, ये सारे सियासतदान वो अपनी जेब में लेके घूमता है।
ओके,
उसने एक तीर से दो शिकार किए और क्लासिक निशाने पे।
ओके,
इनको लड़ा दिया पीडीएम वाले के, बाकी लोगों को लड़ा दिया आवाम से और इमरान को लड़ा दिया फौज से, जो कि इमरान बहुत बहुत बड़ी गलती उसने की है जज्बात में आके।
नहीं, आसिफ अली जरदारी साहब ने क्या किया, कैसे लड़ा दिया, कैसे लड़ा दिया उन्होंने? ना ना ऐसे बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत सर। मैं आसगर भाई बहुत देखें, एक सेकंड इजाजत दीजिए, मैं बता रहा हूँ। नहीं नहीं, एक सेकंड सिर्फ 30
सेकंड। नहीं आप मेरी बात नहीं समझे, उसने इस तरह का माहौल पैदा किया कि ये खुद ब खुद।
नहीं बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत असगर भाई, बिल्कुल गलत। हम आंखें बंद नहीं करें, बिल्कुल गलत। कोई आसिफ अली जरदारी साहब ने कोई ऐसा माहौल पैदा नहीं किया। खान साहब की गवर्नमेंट जो आई थी उसको जितनी सपोर्ट एस्टेब्लिशमेंट ने की है।
नहीं
एक सेकंड लेट मी फिनिश, लेट मी फिनिश। आपने आपने बात की
है, खान साहब सियासतदान नहीं है वो।
सर सर मैं हाथ जोड़ता हूँ सर, इजाजत दीजिए कि दूसरे लोग ये हम डिबेट नहीं कर रहे, लेकिन कम से कम आपने बात की तो मेरा भी हक है ना। ये कहने की बात नहीं कि खान साहब क्यों नहीं सियासतदान है, बिल्कुल सियासतदान है। 22 साल से वो क्या कर रहे हैं, 23 साल से यही कर रहे हैं, सियासतदान क्यों नहीं है वो? मतलब हम लोग ना
बेसिक लोग थे उनको
देखें, ये गलती देखे चले गए वो जहाँ से
सब चले।
यार असगर भाई बात ये है, मैंने अभी अगर आपने सुना हो, वो जहाँ से आए थे ना वो वहीं चले गए, जैसे वो क्रिएट किए गए थे। तो ये
नहीं
बात
लेना चाहिए था,
नहीं बात
लेना चाहिए था, और 5 साल इंतजार कर लेता।
मैं क्या कहूँ आपको, हमारे साथ मसला ये है कि हम अपने आप को सही समझते हैं, सुनते नहीं है। आप सबको सब सामने नजर आ रहा है, नजर आ रहा है, इसके बावजूद भी हम खान साहब को तो मैं भी पसंद करता हूँ, मैंने भी उन्हें वोट किया है। बात ये नहीं है,
बिल्कुल मैंने खुद
बात
किया
है,
बात
ये है कि क्या उन्होंने बेहतर गवर्नेंस की, वो नहीं की।
नहीं ना, बस वही।
अच्छा
ना।
फिर उसके बाद सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि देखिए, सब प्रॉब्लम ये है कि जब आप लोगों को ये तरगीब दे दें कि उन्हें बाहर रोड पे निकल के इमलाकों को बिड़ा रख करना उनका,
सबसे बड़ी गलती।
नहीं गलती
और तो आप जुर्म कह रहे हो।
खैर मैं नहीं कह रहा, ये अभी इन्वेस्टिगेशन होनी है, वो पता चलेगा। लेकिन मैं
अगर ऐसा हुआ है, सब मैं कह रहा हूँ ना, जुर्म अगर ऐसा हुआ तो जुर्म है, अभी तो मुल्ज़िम है ना।
अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला कुछ ऐसा वसीला बनाए कि जहाँ पर देखें, अभी आपने कहा ये, मैं आपकी बात को बिल्कुल, मैं तो उसके कोई तबसरा नहीं करूंगा। आप कह रहे हैं कि इलेक्शंस होंगे, मैं ये कह रहा हूँ नहीं होंगे। तो यहाँ पर हम इस बात को रोकते हैं, देखते हैं क्या होता, हो सकता है आप बिल्कुल दुरुस्त हो। लेकिन जहाँ तक आसिफ अली जरदारी साहब की बात है, मेरे ख्याल में उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की जिसमें हाँ ये जरूर
वो
हुआ।
मेरी बात तो वो बात करता ही नहीं है ना, असल समझदार आदमी का तो यही तो इस पर वतीरा है ना, कि वो बात करता नहीं है, काम करता है।
चले, ओके। देखिए मैं आपको बहुत क्लियरली बताऊँ, आसिफ अली जरदारी साहब का ना तो मैं पीपल्स पार्टी में हूँ, ना मैं उनको सपोर्ट करता हूँ पीपल्स पार्टी को। लेकिन जो बात है वो है, उसको बात करनी चाहिए, उसके बारे में हम कोई भी ऐसी बात ना करें जो गलत हो। देखिए किसी ने खान साहब को ये फोर्स नहीं किया कि वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जाए, किसी ने भी, वो खुद उनका अपना बयानिया था जो उन्होंने बनाया। हाँ, क्या ये सब इकट्ठे हो गए थे खान साहब की गवर्नमेंट को गिराने के लिए, ये बात बिल्कुल सही है। तरीके अदम एतमाद दे के आई, ये बात भी बिल्कुल सही है। इसे ऑर्केस्ट्रेट किसी ने किया, ये कोई नहीं जानता, हो सकता है उसमें आसिफ अली जरदारी साहब हो सकता है उसमें शहबाज शरीफ साहब हो, नवाज शरीफ साहब हो, ये सारी बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं। तो वहां तक, लेकिन हम बात वो करें जो फैक्चुअल है, फैक्ट्स के अलावा बात ना करें। लेकिन मैं जो पूछ रहा हूँ, फेवरेट सिंगर कौन है यार, ये बताओ ना, हम इतने को पॉलिटिकल शो थोड़ी है ये। 02111637236 हाँ जी
जी सलामकुम जी, मेरा नाम प्रताशा है और मैं अभी साहिल लोधी साहब के शो में बात करना चाहती हूँ।
जी जी बोलिए प्रताशा, बोलिए।
अभी उनकी वो वाली कॉल तो खत्म नहीं हुई, आई थिंक
हो गई।
ओके
जी 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 बोलिए।
नहीं मेरे साथ वो अभी चल रही है, बिकॉज मैं सुन रही हूँ शो।
नहीं वो डिले होता है ना, वो डिले आता है। अब आपकी कॉल एक मिनट के बाद जाएगी। यू आर ऑन द एयर, अभी आप ऑन एयर हैं। जी जी बोलिए।
अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है. जो फेवरेट सिंगर की बात उन्होंने की है उसमें मैं बताती चलूँ कि आतिफ असलम है, हदीका क्यानी है. और जो दूसरा मैं आपको बताना चाह रही थी जी 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 अब दूसरा मैं आपको जो आप पॉलिटिक्स के ऊपर बात कर रहे थे उसका मैं आपको ये बताती चलूँ कि अभी जो करंट सिचुएशन है पाकिस्तान की, कल भी आपका बड़ा अच्छा टॉपिक था कि एक दिन की हुकूमत, एक दिन में तो बहुत मुश्किल है जो हमारे इस मुल्क के हालात हैं. लेकिन जो अभी करंट सिचुएशन है उसमें आप जितने भी मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज देखें तो हम लोगों को इस लेवल पर आ गए हैं कि अब हम ये सोच रहे हैं कि हम किसको वोट करें. सो नाउ इज द टाइम आई थिंक जो पाकिस्तान के जितने भी पॉलिटिशियंस हैं दे हैव टू रीथिंक देयर पॉलिटिक्स. उनको नेमिंग
मुझे बहुत खुशी हुई है जो आपने इतनी आपने इतनी सॉलिड इतनी मुनासिब बात की है. मुझे जो मेरी जिंदगी का जो शौक लगा, मेरी बहुत सारी उम्र जो है वो बाहर गुजरी है, आई ग्रू अप इन स्टेट्स, तो वहां मैंने एक चीज देखी कि जब बराक ओबामा ने सिग्नेचर किए प्रेसिडेंशियल, वो 17 पेन डिफरेंट होते हैं जिससे वो साइन करते हैं ओथ पे ना, तो जब उन्हें सिग्नेचर किए तो उन्होंने स्पेसिफिकली कहा कि आज के बाद पुरानी गवर्नमेंट को किसी चीज के लिए ब्लेम नहीं किया जाएगा बिकॉज नाउ वी आर रिस्पॉन्सिबल. तो मुझे लगता है कि अगर हम ये जो भी आपने नुक्ता कहा, अगर ये नुक्ता हमारे पॉलिटिशियन समझ जाए तो मेरे ख्याल में वो बहुत अच्छा.
और साहिर भाई एक और चीज बड़ी जरूरत है, जो पर्सनल अटैक ये लोग करते हैं किसी को भी इजाजत नहीं है. मतलब आपको एक दुनिया फॉलो कर रही है, हम सारे अपने लीडर्स की तरफ देख रहे हैं जो पर्सनल अटैक्स हैं. मतलब आप अपनों की बेटर हाफ के ऊपर भी चले जाते हैं उनको इस तरह से, और जो बुलिंग करनी है, जो उनकी नेम जिस तरह से यूज करने हैं, मतलब हम अपनी अगली जनरेशन को क्या बता रहे हैं. आई कांट टेल यू, आई एम द मदर और मैं चाहती हूँ कि मेरा यंगर बेटा पॉलिटिक्स में आए, ही रियली वॉन्ट टू बी अ प्रेसिडेंट, बट हम बिल्कुल एक डिफरेंट सोच से अपने बच्चों को रेज कर रहे हैं. तो जो बुलिंग का कल्चर कर दिया है इसमें खान साहब की गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल है और हम बहुत मायूस हुए. मतलब खान साहब से बहुत सारी उम्मीदें थी लोगों को और अभी भी जितने पॉलिटिक्स हैं, अगर आप मरियम नवाज को देखें, आप बिलावल भुट्टो जरदारी, वो बच्चा कहाँ से पढ़कर आया है, लेकिन उनकी लैंग्वेज भी वही है. वो जिस तरह से ब्लेम गेम्स खेलते हैं और जिस लेवल पर जाके खेल रहे हैं, दैट इज अ वेरी वेरी बहुत ही डीप लेवल है. मतलब आई डोंट वांट टू यूज दिस वर्ड, लेकिन ये हमारे लीडर्स हैं, इनको हम देख रहे हैं. अच्छा, और दूसरी बात ये है कि साहिब भाई हमारे पास ऑप्शन भी नहीं है. ठीक है, हम कहाँ पे जाएं, हमारी यही मेन पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो हमारी फिर थोड़ी सी जो मेन स्ट्रीम में पार्टीज नहीं है. अब टाइम आ गया कि उनको स्ट्रेंथन करें, उनमें से लीडर्स निकालें, उनको आगे लाइन लाइट पर लेकर आए ताकि वो लोग आगे थोड़ा रिप्रेजेंट कर सकें. लेकिन द प्रॉब्लम इज दिस कि ऑप्शन भी नहीं है. इन्हीं लीडर्स के साथ हमने गुजारा करना है और इनको हमने इंप्रूव करना है. हम क्या करें, हम नए लीडर्स नहीं ला सकते. बट द प्रॉब्लम इज दिस कि लीडरशिप का जो कॉन्सेप्ट है, आई मीन लोगों को समझ नहीं आती कि एक क्रिजमेटिक चीज होती है. आपके जो लीडर्स होते हैं उनको अपने आप को, मतलब उनका अपना एनालिसिस. और खान साहब इतनी बड़ी पार्टी थी, साहिब भाई इतनी डिसअपॉइंटमेंट है, इतनी बड़ी पार्टी है, जिस तरह से बुरी तरह से टूटी है उन सब लोगों की मेहनत. और आई थिंक इस टाइम पे खान साहब को जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए थी और जिनको अपना मोराल बिल्ड करना चाहिए था अपने फॉलोअर्स का, वो उसमें करने में बिल्कुल नाकाम रहे हैं. उन्होंने मतलब उनकी जो 3-4 डिकेड्स की मेहनत थी उन्होंने बिल्कुल जाने दी है. वो इस टाइम पर भी एक बहुत बड़े लीडर अपने आप को साबित कर सकते थे, जिसको करने में वो बहुत नाकाम रहे हैं. और अभी भी उनको रीस्ट्रेटेजाइज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है अपनी पार्टी को, कि उन्होंने अभी भी उनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं जो उनको देख रहे हैं और उन लोगों की होप भी उन्होंने तोड़ी है. मतलब वो सारा जो नैरेटिव एक तीसरी पोलिटिकल पार्टी ने बिल्डअप किया था. तो ये कुछ चीजें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी कि अभी भी बहुत हमें इस चीज के ऊपर काम करनी. हम स्टिल बिलीव इन डेमोक्रेसी, we don't want that any other system come into this place, but we really want ki isko mazid improve hona chahiye, bahut had tak improve hona chahiye. jab tak hum aur aap jaise log bolenge nahi.
बिल्कुल. अच्छा, एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ, उसके बाद मैं दो सवाल होंगे, टाइम है आपके पास, 2 मिनट ले सकता हूँ मैं आपके.
जी जी.
ओके, पहला सवाल ये मुझे बताइए, अगर आपको फर्ज करें आपको गवर्नमेंट मिल जाती है एक दिन के लिए, आप क्या करेंगी? What would you do?
अच्छा साहिब भाई, एक दिन में बहुत मुश्किल है चीजें. ठीक है, लेकिन मैं जो क्योंकि मैं भी डेवलपिंग सेक्टर से काम कर रही हूँ, थोड़ी बहुत जो मेरी नो आओ है, इतनी ज्यादा मैं नहीं कहती. मैंने बड़ा करीब से इन पार्टी के साथ ही काम किया है. हमारे पाकिस्तान में ऑलरेडी बहुत अच्छे सिस्टम इन प्लेस है, हमारी बहुत अच्छी सासी कर दी गई है साहिब भाई, और बहुत अच्छे हमने उन कानून साजी के ऊपर किसी हद तक हमने कुछ अच्छे इदारे भी बना लिए. अगर हम जो ऑलरेडी चीजें इन प्लेस हैं उनको फंक्शनल कर लें और उनको इफेक्टिव कर लें, और जितने भी इदारे हमारे इस टाइम पर हैं, अभी हमारा इंस्टीट्यूशनल फेलियर बहुत हद तक चल रहा है, जितने भी इदारे पाकिस्तान में हैं अगर उनकी अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी के मेकेनिज्म हायर हो जाते हैं और उनकी टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बहुत हो जाती है और वो डिलीवरी पर आ जाते हैं, तो नो डाउट दिस कंट्री विल प्रॉस्पर. और जितनी कानून साजी हो चुकी है ना साहिब भाई, अगर उसकी इम्प्लीमेंटेशन होना शुरू हो जाए ना, उस कानून साजी के अकॉर्डिंग चीजें होना शुरू हो जाए, मैं आपको बताऊं 17+ लॉज तो सिर्फ गवर्नमेंट इन औरतों के हकों को लेकिन औरतों को पता ही नहीं है कि हमें कौन कौन से हकूक मिल चुके हैं, तो वो अगर इम्प्लीमेंटेशन में आ जाए, आपकी जो है फर्स्ट ईयर की आपकी या फिर सेकंड ईयर की और अगर थर्ड ईयर की आपकी गवर्नमेंट आ जाती है, लोकल गवर्नमेंट, अभी भी हम कहते हैं कि 18 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद प्रोविंसेस ने किसी हद तक कारकर्दगी दिखाई है, अभी भी बहुत उस तरह से लेवल से नहीं आई जिस लेवल पे आने चाहिए, क्योंकि बजट के इशू थे, फिर वहां पर जिन लोगों के पास बजट बैरोक्रेट्स भी जाते थे, मतलब उनको वो करने में अभी भी बहुत सारे इश्यू थे. लेकिन जो भी है, अगर इसी तरह अगर आप थर्ड ईयर पे भी ले जाए लोकल गवर्नमेंट की, फिर भी कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट आ जाएगी. लेकिन किसी चीज को भी रिवोक करना, 18 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को रिवोक कर, किसी भी चीज को दोबारा से अगर आप उसको कलदम करार करेंगे तो उसमें कुछ भी नहीं होगा. इसी सिस्टम में बेहतरी लानी पड़ेगी जो सिस्टम है.
अच्छा, एक लास्ट सवाल. अभी आपने मुझे जिक्र किया बातों बातों में कि आपका जो बेटा है वो पॉलिटिक्स में आना चाहता है, वांट्स टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, राइट? यही ऐसी बात थी, ऐसी कुछ कहा आपने?
जी बिल्कुल. मेरा छोटा जो बेटा है उसका नाम हुसैन है, वो आज 10 इयर्स का हुआ है,
माशाल्लाह.
बचपन से कहता था कि आई वांट टू बी अ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान.
हैप्पी बर्थडे. हैप्पी बर्थडे टू हिम.
उसको बताया कि अच्छा प्राइम मिनिस्टर के पास ज्यादा पावर्स होती हैं, बट ही रियली वांटेड टू बी इन द पॉलिटिक्स, और वो लॉ करना चाहता है, लॉ करने के बाद ही वांटेड टू बी इन द पॉलिटिक्स.
अच्छा, मेरा क्वेश्चन है Knowing that कि आपको अवेयरनेस भी है, knowing that कि आपको एनवायरमेंट का भी पता है, knowing that कि आपको लीडर्स के हमारे जो ये टेम्परमेंट्स हैं उनका भी पता है, मुझे बताइए आप किस तरह से उसको सपोर्ट करेंगी अपने बेटे को, किस तरह? मुझे लगता है कि आप उसे सपोर्ट करेंगी, लेकिन किस तरह से सपोर्ट करेंगी?
मैं साहिब भाई, मैं अभी से उसके ऊपर काम करना शुरू कर रही हूँ, और मैंने अभी खुद भी अगर आप अवामी वर्कर्स पार्टी को जानते हो, वुमेन डेमोक्रेटिक फ्रंट, अभी वो छोटे मतलब लेकिन वो लेफ्ट की पार्टी से, मैंने उनके साथ मैं उनके पार्टिसिपेंट हूँ, मैं उनके साथ मैंने शमूलियत इख्तियार की है, तो मैं अपने बेटे के साथ अभी से, और अभी हुसैन को गो होने में अगले 10-12 साल है, और आई विल ट्राई माई बेस्ट एट माई लेवल इन माई सर्कल की हम जो अभी पाकिस्तान उसको मजीद बेहतर करें, पोलिटिकल इन्वायरमेंट नए आने वाले बच्चों के लिए ज्यादा बेहतर करें. और हुसैन को मैं बड़े अच्छे तरीके से लेकर चलूंगी कि जिस तरह के लीडर्स हम देखना चाहते हैं. सो आई डोंट नो, दिस पोलिटिकल करियर इज लॉन्ग, मतलब लोगों की उम्रें लग जाती हैं, और इंशाल्लाह आई एम वेरी होपफुल अबाउट इट. और कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर इतनी डार्कनेस है और कहीं लाइट ना हो, तो फिर लेकिन वो लाइट हमने खुद बनना है, मतलब वो
हमारे. Seriously, बहुत खुशी हुई आपसे बात करके. हुसैन को मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे बोलिएगा, एंड थैंक यू सो मच. बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया. वंडरफुल टॉकिंग टू यू, वंडरफुल टॉकिंग टू यू. गॉड ब्लेस यू, थैंक यू. दैट वाज ज़रताशा, एंड मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई उनसे बात करके. बहुत बहुत बैलेंस बात की है. देखें, दिस आई एम अमेज्ड. मुझे तो बहुत मैं बहुत खुश हुआ हूँ. मैं मुझे और अच्छा, मैंने वो जान के आखिरी वाला सवाल किया कि आप किस तरह से प्रिपेयर करेंगे अपने बच्चे को, तो उन्होंने बताया कि जी अच्छा, इसमें जो गहरी बात है वो ये है कि सिस्टम जो कुछ भी हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ले रही हूँ, मैं ओनरशिप ले रही हूँ अपने बच्चे की, अपनी औलाद की. अगर जैसे इनका एक जुमला, बड़ा जबरदस्त जुमला है, उन्होंने कहा जैसे लीडर्स हमें चाहिए वैसे लीडर्स मैं उसको वो बनाने की कोशिश करूंगी. दिस इज ऑल वी वॉन्ट. दैट्स एग्जैक्टली हाउ थिंग्स आर गोना हैपन. दैट्स हाउ थिंग्स आर गोना चेंज. If we take the responsibility, जैसे अभी ज़रताशा ने कहा, अगर हम ये responsibility ले लें ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ पाकिस्तान would be transform like anything. और इंशाल्लाह ताला, और एक इनकी आखिरी बात मुझे, क्योंकि मैं हमेशा बहुत पॉजिटिव रहता हूँ, आखिरी बात तो बहुत कमाल लगी, कहले वो लाइट हमें जिस चीज की हमें तलाश है वो हमें खुद बनना है. आई लव योर कॉल, ऑनेस्टली आई लव योर कॉल, यू मेड माई डे, थैंक यू सो वेरी मच. बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया. हैप्पी बर्थडे टू हुसैन. हुसैन, इफ यू लिसनिंग टू मी, डूड, गेट इन टू पॉलिटिक्स and change things. Inshallah, 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 everything is going to happen. But thank you, bravo. Bahut bahut shukriya aapki call ka. Ek chhota sa break hai, break ke baad baat karte hain. All right, gee, once again, welcome back. And yeah, मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई है और आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, at the end of the day, चीजें ठीक हो ही जाती हैं. I know time कम है, तो let me have some food. Because time ही नहीं मिलता था खाना तो खा लूँ मैं. उसके बाद जैसे ही वापस आता हूँ, मतलब ब्रेक के बाद, आप लोग गाना सुनिए. ब्रेक के बाद जब मैं वापस आता हूँ तो आपकी टेलीफोन कॉल्स लूंगा. यू कैन से एनीथिंग. मैंने तो आज ये कहा है कि आपको फेवरेट सिंगर कौन है, बस मुझे ये बता दीजिए. इट कुड बी राहत फतेह अली खान, नुसरत अली खान साहब, लता मंगेशकर जी, आई डोंट नो, बिली हॉलिडे, यू नो, ब्रायन एडम्स, माइकल जैक्सन, आई डोंट नो, जो आपको पसंद है आप उनका नाम लीजिए. और देन कुछ और अगर आप कहना चाहते हैं तो वो भी आप कहिए. एंड आई लव यू गाइस, थैंक यू सो मच. बस जस्ट स्टे पुट और होप का जो उम्मीद का दामन है वो हाथ से मत छोड़ें. थिंग्स आर गोइंग टू गेट बेटर. आई नो इट्स वेरी डार्क टुडे, बट tomorrow there's light. There's all right then. Ladies and gentlemen, once again welcome back. And yeah, let's take a phone call and let's see who this is online. 021-111-637-236 is the number to call, and you're on the air. Assalamu alaikum ji. Hello. Assalamu alaikum. Hello. 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 All right, dobara call kar lijiyega. 021-111-637-236 is the number to call. So just remember this, that you know, जब भी आप call करें तो please अपने phone को जरा एक तरफ रख दिया करें, अपने radio को जो है वो बंद कर दिया करें, ताकि मेरी सबसे properly बात हो सके. तो अगर आप यहाँ call करना चाहते हैं तो 021-111-637-236 यहाँ call करने का number होगा. And you know, there are times जब आप मुझे call करते हैं तो उसको hang up कर दिया करें, वरना हमारी ये दोनों तीनों lines जो होती हैं वो busy होती हैं, stuck हो जाती हैं. So please, I do request उसको कर दिया कीजिए. अस्सलाम वालेकुम जी, you're on the air. वालेकुम अस्सलाम, आपका नाम?
मैं सैयद इरशाद अली बात कर रहा हूँ कराची से.
सैयद साहब कैसे हैं आप?
अल्लाह का बड़ा करम है, आप सुनाइए साहिर भाई, खैरियत
से? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र. सैयद साहब बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक. अच्छा ये बताइए जी सर, ये बताइए कि आपका फेवरेट सिंगर कौन है, पहले तो ये बता दीजिए.
बस सर, सिंगर तो हमारे जो थे वो पुराने ही थे,
याद है आपको कोई नगमा याद है उनका?
बहुत सारे, बहुत सारे. आपको भूल जाए हम इतने तो बेवफा नहीं, आपसे क्या गिला करें, आपसे कुछ गिला नहीं.
अरे क्या बात है सर, सुना देना थोड़ा सा, क्या हो गया?
आपको भूल जाए हम इतने तो बेवफा नहीं, आप से क्या गिला करें.
Very nice.
सर बस.
Very nice.
अच्छा सर, मैंने आपके पोर्टल पे एक मैसेज सेंड किया था, मुमकिन आपको मिल गया हो?
नहीं अभी तो नहीं मिला, कब किया था आपने?
मैंने आज दोपहर में सेंड किया था सर.
अच्छा मैं पता करवा लेता हूँ, मैं पता करवा देता हूँ, बिल्कुल पता करवा देता हूँ. कुछ और मजीद कहना चाहेंगे
जी सर?
कुछ और कहना चाहेंगे? That's it.
बस साहिब भाई, मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि अक्सर आप लोगों से सवाल करते हैं, आज मैं आपसे एक सवाल यह कर लूं कि सर आप जो कहते हैं कि इनको वोट दे, इसको मतलब समझाए, अपने आप को सुधारे, सर हम क्या करें, हम क्या अथौटिया जाए वोट देने के लिए? क्या
पहले तो मैंने कहा, मैंने तो आपको कभी नहीं कहा कि आप वोट दें, वोट तो आपको देना चाहिए, ये तो बगैर किसी उसके बात है, वोट तो आपको, वो तो मेरे कहने से नहीं, मेरे कहने के अलावा भी देना चाहिए. और ये मैंने कभी नहीं कहा कि आप सिर्फ अपने आप को सुधारें, ये मैंने कभी नहीं कहा. हाँ मैं ये जरूर कहता हूँ, मैं ये जरूर कहता हूँ कि देखिए एट द एंड ऑफ द डे आपने वो करना है जो सही है, वो नहीं करना जो आपके लिए सही है. फैसले दो ही तरह के होते हैं.
एक वो कि यही गिने चुने लोग हैं, इन्हीं को वोट देंगे.
नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, ये नहीं. आप सुनिएगा, मैं जवाब देता हूँ इसका. नहीं, बिल्कुल नहीं. ये जो हम कहते हैं ना कि ये गिने चुने लोग हैं, जिस वक्त कौम, आपने मेरी बात ही नहीं सुनी, आपने अपनी बात को मेरा नाम लेके बता दिया. अंडरस्टैंड करें इस बात को, सही है साहब, अंडरस्टैंड कीजिएगा. जब कौम ये कहने लग जाए ना कि हम क्या कर सकते हैं, तो फिर वो कुछ नहीं कर सकती, फिर वो कुछ भी नहीं कर सकती. ये आपको और मुझे ढूंढना होगा. अभी आपने जरताशा की कॉल सुनी थी ना, मैं क्या कहता हूँ, मैं हमेशा ये कहता हूँ ना कि आप वो मोजा खुद हैं. जो बात उन्होंने कही वो बात मैं हमेशा कहता हूं. इमेजिन करें कि आप जिस लाइट को ढूंढ रहे हैं वो कोई और नहीं, वो आप हैं. जब आप कुछ डिफरेंट करेंगे ना तो चीजें डिफरेंट हो जाएंगी. लेकिन हमारे साथ मसला ये है कि हम मुझसे के इंतजार में हैं, हम हादसों की मुंतजर कौम है. हादसा होता है, इकट्ठे हो जाते हैं, हादसा खत्म हो जाता है, फिर बिखर जाते हैं. व्हाई? हमें अपने बच्चों में ये बिहेवियर इंकल्केट करना पड़ेगा, उन्हें सिखाना पड़ेगा जो हमने कभी नहीं सीखा, और हमने जो सीखा है उसे अनलर्न करना पड़ेगा, उसे खत्म करना पड़ेगा और नए सिरे से चीजें सीखनी पड़ेंगी. सवाल यह है कि क्या हम इसके लिए तैयार हैं? नहीं. हम हाथ क्यों उठा देते हैं कि जी हम क्या करें? बिकॉज हम अनलर्न करने पर तैयार ही नहीं है, हम मेहनत करने पर तैयार ही नहीं है, हम चॉइसेस लेने पे, देने पे, ऑप्शंस रखने पे तैयार ही नहीं है. हम बगैर मेहनत किए पाकिस्तान को तब्दील करना चाहते हैं. नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता. आप मुझे बताइए, ये जो IMF के प्लान्स हैं, अभी भी आप देख लीजिए, पट्टियां चल रही हैं. हर जिस चैनल को उठाएं आपको पता चल जाएगा 90% जो पट्टियां हैं वो बाहमी झगड़ों की चल रही हैं. एक ऐसे मुल्क में जो डिफॉल्ट के करीब हो, वहां पर 90% पट्टियां बाहमी झगड़ों की चल रही हैं. ये जमात बन रही है, वो टूट रही है, वो फला ग्रुप शामिल हो गया, वो ये क्या, व्हाट इज दिस न्यूसेंस? अंदाजा किया आपने? दिस इज व्हाट वी गो थ्रू एवरी सिंगल डे. और हमने हाथ उठा दिया, हम कहते हैं हम क्या करें, यही लोग हैं. नहीं, अगर ये बात है तो फिर याद रखिए, फिर कोई चीज तब्दील नहीं होगी. मैंने आपको पहले भी समझाया, जो चीज मैं समझाता हूं वो नहीं आप लोग कोट करते, अपनी तरफ की को बात कोट करते हैं. मैंने आपको 10,000 मरतबा एक बात समझाई है कि 75 साल से ये रोना रो रहे हैं हम कि बिजली नहीं आती. तो याद रखिए, जितने जिम्मेदार वो हैं जो बिजली नहीं देते, उतना ही जिम्मेदार आप हैं, क्योंकि अब आप प्रॉब्लम का हिस्सा हैं, प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपने कभी तलाश नहीं किया. मैंने आपको 1,000 मरतबा कहा है, आपकी बात नहीं कर रहा सही साहब, बहुत सारे और लोगों की बात कर रहा हूं, करोड़ों पाकिस्तानियों की जो सब मुझे सुन रहे हैं. मैंने हमेशा कहा है कि अपने बच्चों को स्कूल में रखिए. कितने माँ बाप हैं जो ये कर सकते हैं? हर शख्स एक नई कहानी सुनाता है कि नहीं, हम अफोर्ड नहीं कर सकते. बजा बिल्कुल ठीक है, यहां तक मैं मानता हूं, लेकिन राहें तो तलाश की जा सकती हैं, मेहनत तो की जा सकती है, एक के बजाय 2 नौकरियां की जा सकती. मैं जापान में था, मैंने जापान के अंदर 3-3 नौकरियां की हैं, अमरीका में 3-3 नौकरियां की हैं. आपको एक किस्सा सुना रहा हूं अपना. जब मैंने इस मीडिया में काम शुरू किया था तो 7,000 रुपये मुझे मिला करते थे महीने, एक महीने के. 2005 की बात बता रहा हूं आपको. और जो पैसे मुझे अम्मा के हाथ में रखने होते थे घर का खर्च चलाने के लिए, वो इससे बहुत ज्यादा थे. मैंने दिन और रात काम किया, दिन और रात काम किया, कोई शो नहीं छोड़ा. आप जब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ लेते हैं कि आपको ये करना है, तो याद रखें दो सूरतें होती हैं. या तो आप ये डिसाइड कर लीजिए कि आप गलत तरीके से पैसा कमाएंगे, या ये डिसाइड कर लीजिए कि मेहनत करके पैसा कमाएंगे. और याद रखिए, दोनों तरीकों पे हो जाता है. मैंने ये नहीं कहा कि मैं क्या कर सकता हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं सब कुछ करूंगा, बिकॉज आई वॉन्टेड टू. आप समझते हैं, अगर आप लोग बिजनेस करते हैं तो आपको अंदाजा होगा, बिजनेस में कोई एक दिन एक जैसा नहीं है, सब उतार चढ़ाव आता है. हम गुजरते हैं उस चीज से, क्या करें, लेकिन जीना है और बेहतर से बेहतर होके जीना है. तो हाथ मत उठाएं, ये मत कहें कि हम क्या कर सकते हैं, या हाथ उठाने का मतलब गिव अप करने से नहीं, बल्कि ये कहिए हम ही कर सकते हैं और हम करेंगे, ऑप्शंस खुद बखुद बनेंगे. इरफान भाई कैसे हैं आप?
ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह.
जी इरफान भाई बोलिए, हुक्म कीजिए, कौन है आपका फेवरेट सिंगर?
हैं? आवाज नहीं आ रही, आवाज अभी सही हो गया.
हाँ हाँ, मुझे बताइए कि आपका फेवरेट सिंगर कौन है?
मेरा फेवरेट सिंगर रेमशा.
रेमशा का कोई गाना याद है?
अब मेरा गाना याद है उसका.
कौन सा?
अम्मा मुझको झुलाओ ना झुला ले, अम्मा मुझको झुलाओ ना झुला ले, अम्मा. ये मुझे याद है.
माँ मुझको झुलाओ ना झुला रे, माँ मुझको झुलाओ ना झुला. यही ना?
यही वाला.
हाँ, वेरी नाइस, वेरी. अच्छा इरफान भाई, सब ठीक है ना? सब खैरियत है ना?
अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक है.
चले चले चले.
मैं आपसे मिलना चाहता हूँ.
आप मुझसे मिलना चाहते हैं आ जाइए यहाँ पे, मिल लेंगे मैं आप मुझसे।
बहुत तुम्हारा बहुत ज्यादा प्रेम, बहुत ज्यादा
थैंक यू,
तीन प्रोग्राम अच्छा से सुना था मैं,
थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया। आप यहाँ पर जब भी आएंगे आप मुझसे मिल लेंगे।
जी जी जी
सही है,
मैं आपकी आवाज आवाज का दीवाना हो गया।
अरे थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आपके अंदाज का दीवाना हूँ, आपका अंदाज मुझे बहुत अच्छा लगता है।
जी जी मैं आपकी आवाज का जब आप जो बातें कर रहे हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है।
थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया। दैट्स इरफान, थैंक यू सो वेरी मच। और यू नो लेट्स टॉक ना, जब तक हम बात नहीं करेंगे तो बात बनेगी कैसे? बात तो डेफिनेटली करनी है। 02111637236 यहां कॉल करने का नंबर। लेट्स सी हु दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जी, यू आर ऑन द एयर।
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम, आपका नाम?
सर जी मैं सैयद इशाद अली बात कर रहा हूं।
जी सर आप फोन बंद कर दीजिए, अपना वो बंद कर दीजिए रेडियो प्लीज। हेलो इशाद भाई, अच्छा थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है तो प्लीज वो बंद कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम सैयद भाई जी, गेट क्या हाल है आमिर साहब?
वालेकुम अस्सलाम आमिर, कैसे हैं आप? ठीक हैं?
अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बहुत बहुत करम है, बहुत बहुत शुक्र है सैयद भाई। आपकी खूबसूरत बातें सुन रहे थे कल भी परसों भी, और बहुत दिल चाह था कि बात करें, लेकिन हमने कहा सुनते हैं, सुनने में ज्यादा मजा आता है। कहते हैं जो सुनता है वो ज्यादा जानता है, और जब वो बोलता है तो अच्छा बोलता है। पता नहीं हम अच्छा बोलते भी हैं कि नहीं, या खुशफहमी है। लोग तो कहते हैं हमारे दोस्त के यार तुम कभी कभी अच्छा बोल जाते हो, कभी कभी तो जोर था इनका। सैयद भाई आपने आज जो बात की एक कि हमें खुद में से कुछ निकालना होगा और खुद कुछ सीखना भी होगा और कुछ सिखाना भी बच्चों को होगा हमारे, बिल्कुल सही कहते हैं आप। हमारा माशरा साहिब भाई हकीकत है बिल्कुल तबाह और बर्बाद हो चुका है, और माशरे जो तब्दील होते हैं ना वो दिनों महीनों सालों की बात नहीं होती, ये दहाइयों पे मुहित अरसा होता है जो हमें दरकार होता है। और अब ऐसा ही हम बारह कह चुके हैं कि खुदा रहा कम अज कम अपनी बच्चियों को तो आला तालीम याफ्ता बनाओ, उससे ये तो होगा कम अज कम कि आने वाली जो नस्ल कभी होगी उन बच्चियों के जेर निगरानी जो बच्चे परवरिश पाएंगे तो वो फिर एक आला कौम बनेगी वो, क्योंकि एक बाकिरदार और पढ़े लिखे बच्चे होंगे। खैर ये बात यहाँ खत्म हो जाती है। अब देखिए बात जो है कि इन हुक्मरानों की बात हो रही थी, ये हुक्मरान जो है सब कह रहे हैं कि ये हम लोग, कुछ लोगों ने कहा कि ये हम लोगों ने खुद अपने ऊपर लाकर और मसलत की है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। अगर हमारी बात जरा उसी गौर से सुन लीजिएगा, अगर हम समेत अपने अपने गिरेबानों में झांकते हैं ना तो हमें पता लगता है कि ये हमारे अपने आमाल हैं जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने ये हुक्मरान हम पर मसल्लत किए हैं। और देख लीजिए हम क्या हैं, आज देख लीजिए हमने अपना काम कितनी ईमानदारी से किया सारा दिन, आज हमने क्या कोई झूठ नहीं बोला, क्या हमें मुनाफिकत नहीं, क्या हमें आज दिन में एक वक्त कभी ये ख्याल आया अपने रिश्तेदारों का या अपने दोस्तों का कि कहीं कोई मुसीबत ना हो, कोई परेशानी में ना हो, क्या कोई ख्याल हमें आया? क्या हम किसी से हसद नहीं करते? क्या हम किसी की मदद करने पे हर वक्त तैयार रहते हैं? क्या हम दूसरों को नीचा नहीं दिखाते? क्या हम दूसरों की ख्वाहिशात और दूसरों के अरमानों को कत्ल करके उनकी लाशों पे अपनी ख्वाहिशों और अपने अरमानों के ताजमहल तामीर करने में जरा भी नहीं हिचकिचाते? सब कुछ ऐसा ही है सर भाई, सब कुछ ऐसा ही है। और जिसका नतीजा यही है कि आज ये हुक्मरान हम पे मसल्लत हैं, और अगर हमें सही करना है तो हमको पहली बात तो कि अपने आप को तब्दील करना पड़ेगा। बड़ा लंबा अरसा चाहिए, बहुत एक जिहाद की जरूरत है, और करना होगा अगर अपने आप को बदलना है, इस कौम को बदलना है, इस पाकिस्तान को बदलना है। तो ये अलग करम है कि पाकिस्तान कलमे की बुनियाद पे था तो कायम है, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बख्शिश फरमा ली थी कि इनके अजाब ना भेजिएगा, तो अजाब तो नहीं आता है लेकिन ये सजा तो बहरहाल मिल रही है हमें, और ये हमारे अमालों की बिना पर। देख लीजिए अपने गिरबान में झाँक के हम कितने पारस हैं। आप में से हम में से कोई एक कह सकता है कि अगर कोई एक गैर मुस्लिम हमारे साथ एक महीना हमारे साथ रहे तो क्या हमारे अखलाक हमारे किरदार को देख के मुस्लिम हो जाएगा? नहीं, कभी भी नहीं। हमारे अखलाक हमारे किरदार ऐसे नहीं है। एक वो वक्त था हमारे असलाफ, एक मरतबा दीबल की एक लड़की ने सिंध से हजाज बिन यूसुफ को एक खत लिखा, चूड़ियां साथ भेजी और कहा कि ये पहन लो, यहाँ पे हमारी राजा दाहिर इज्जतें लूट रहा है, अश्मतें लूट रहा है, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो राजा दाहिर ने वहां जाज बिन यूसुफ ने वहां से 17 साल के मोहम्मद बिन कासिम को भेजा। 17 साल का वो बहादुर जवान यहाँ आया और बड़े सदी में फिर उसने फतुहात का आगाज किया। यहाँ पे फिर इस्लाम की तरमीज हुई, इस्लाम का आगाज हुआ और किसी जोर किसी जबरदस्ती से नहीं, वो महकूम थे, हमारे खिलाफ बाज गुजार थे, लेकिन हमारा अखलाक हमारा किरदार उन लोगों का अखलाक उन लोगों का किरदार ऐसा था कि फिर हिंदू और दूसरे जो दर जो लोग मुसलमान हुए और फिर यहाँ पे मुस्लिम की अक्सरियत होती ही चली गई। और आज देख लीजिए कि आज एक जगह है वहां पर एक मुसलमान औरत को बरहना करके उसके आगे नऊज़ुबिल्लाह कलाम पाक के वर्क फाड़ के उसके आगे बिछा कर कहा जाता है कि इन पर चलो, और वो इनकार करती है तो उसे मार मार के लहूलुहान कर देते हैं। उसकी कोई पुकार सुनने वाला नहीं है, अब कोई मोहम्मद बिन कासिम कोई खालिद बिन वलीद आने वाला नहीं है। आफिया सद्दीकी मर जाएगी, कोई उसकी मदद नहीं करेगा। मुसलमान हम कितनी पस्तियों में, खुदारा एहसास कीजिए, अपने आप को
सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर, वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया, ऑलवेज ऑलवेज इट्स अ प्लेजर व्हेन यू स्पीक। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जहाँ ये बात है वहाँ मैं एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि अब कोई मोहम्मद बिन कासिम या अब कोई यू नो खालिद बिन वलीद नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। आई नो हम बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं मुस्लिम दुनिया के जिस वक्त दुनिया पे राज करते हैं, और लेकिन एक बात अंडरस्टैंड कर लीजिएगा, मैं इसको किस दिन फिर डिबेट के लिए खोलूंगा इस मौजू को, लेकिन एक बात याद रखिएगा, एट द एंड ऑफ द डे हम जिम्मेदार हैं इस चीज के। और वो बात आपकी बिल्कुल सही है और मैं सही मानता हूं इस बात को कि हम उसके जिम्मेदार हैं, बट कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह एक बात मेरी याद रखिए, पाकिस्तान में कुछ ऐसी खास बात है कि हम संभल जरूर जाएंगे, ये मैं आपको बता रहा हूं। आज मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बट बिलीव यू मी आमिर, बिलीव यू मी, वन ऑफ दीज डेज यू विल सी अ चेंज एंड दैट चेंज इज गोइंग टू कम विद इन। ये अंदर से आएगी चेंज, ये मैं आपको बता रहा हूं। शायद मैं ना हूं मगर मेरी बात आप याद रखिएगा, आप याद रखिएगा, आप लोग आज मेरी बात लिख लीजिए, ये बात आप मेरी याद रखिएगा। कल मैं नहीं हूंगा लेकिन मेरा मुल्क भी होगा और ये बहुत बेहतर हालात में होगा। ये अंधेरा बहुत ज्यादा देर तक नहीं रहेगा। मैंने कहा ना ये प्लेटफॉर्म आपका है, आप बोल रहे हैं मैं आपको नहीं रोक रहा, कोई और बोल रहा है मैं उनको नहीं रोक रहा, आप बात कीजिए। सबसे पहले मुझे सुनने का हौसला बरदार, मुझे सुनने का हौसला पैदा करना पड़ेगा, फिर इसके बाद जब मैं बोलूं तो आप सुनिए, और कहीं ना कहीं हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे। शायद शायद ये वो पहली सीढ़ी है जो हम रख रहे हैं, अभी तो अब आगे देखिए आगे क्या होता। मुझे हिस्ट्री में तारीख में लिखे जाने का कोई शौक नहीं, मेरा कहीं नाम नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वन थिंग इज फॉर श्योर, जब भी मेरे मुल्क की तारीख लिखी जाएगी उसमें उन तमाम अदवार का जिक्र होगा जिनसे हम होके गुजरे, और लिखने वाले ये लिखेंगे कि हम कामयाब हुए। यू नो व्हाई? बिकॉज आई बिलीव इन अस, I still believe in us. I still believe that there is something about us. There is something about us that makes us different. I know problems hain. I know hum jugaad ki talash mein bhi rehte hain. Hum bahut jugaadu bhi ho jate hain kabhi kabhi. But I don't know somehow hum individually bahut acche hain. Hamare haan zyada good hai. But bad qabiz hai. Don't worry. Inshallah. One of these days That good is going to prevail. ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये गाना सुनने मुझे अच्छा लगता है। All right, जी, once again, welcome back and let's take a phone call. Let's see who this is online. 02111637236 is the number to call. Assalamualaikum, जी, you're on the air. Hello. Hello. अच्छा, मैंने आपसे कहा कि please एक मुझे favor कर दिया करें। जब आप मुझे call करें तो please खुदा का वास्ता अपने radio को बंद कर दिया करें। Otherwise, मैं आपकी आवाज नहीं सुन पाऊंगा। 021-111-637-236 Assalamualaikum, you're on the air.
Assalamualaikum.
वालेकुम अस्सलाम। रेडियो बंद कर दीजिए प्लीज।
रेडियो बंद है साहब भाई।
क्या कह रहे हैं?
रेडियो बंद है।
रेडियो बंद है
जी। जी रेडियो बंद है।
अच्छा क्या नाम है सर आपका? नाम नाम हेलो। मैंने कुछ नहीं किया, जेन्युइनली कुछ नहीं किया मैंने। सलाम जी, यू आर ऑन द एयर। 02111637236। हेलो सलाम। वालेकुम
सलाम। कैसे हो बेटा?
अल्लाह का शुक्र। चौहान साहब कैसे हैं आप?
अल्लाह का शुक्र। अभी मैं आपकी बात सुन रहा था। ये बंदे कह रहे थे कि हम कौम ये कुछ वो खातून थी उसने अपने बेटे के लिए कहा, दूसरे ने कहा। असल बात ये है, इमाम अहमद बिन हम्बल थे एक, सुना हुआ ना आपने?
जी सर ऑफ कोर्स बात कीजिए सर।
तो उन्होंने खलीफा हारून रशीद को कहा कि मदारस में आप इनको हुनर सिखाइए, किसी को बढ़ई बनाइए, किसी को सुनार बनाइए, किसी को दर्जी बनाइए, किसी को लोहार बनाइए, किसी को तबीब बनाइए। उसने कहा दीन का काम कौन करेगा? उसने कहा बात ये है कि खलीफा अगर ये हुनर जानते होंगे तो अपना रिस्क कमाएंगे, नहीं तो दीन बेचेंगे। बात समझ आई आपको?
जी सर बिल्कुल मुझे समझ आया।
हमारी जो पूरी कौम है ये गवर्नमेंट की तरह देखती है, हमें जॉब देगी, हमें ये करेगी, खुद से एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करती, जबकि खुद एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं।
देखो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं।
देखिए बेटे बात ये होती है, कब तक हम दूसरों के हाथों पे देखेंगे? कब तक हम एक भेड़ की तरह गुडरिये के हाथों चलेंगे? कभी नहीं हो सकता। यूनिवर्सल ट्रुथ ये है, आपको खुद खड़े होना है, अपने पांव पे खड़े होना, फिर आपके साथ लोग खड़े होंगे। फिर हुकूमत जो है, सिर्फ हुकूमत का मकसद ये नहीं होता, वो एक खास काम करती है और कुछ नहीं करती। तो वो आपको ऑर्गेनाइज करती है और आपके मुल्क में जो प्लानिंग डिविजन्स होती हैं वो ऑर्गेनाइज करती है। हमारी जिंदगी में खलीफा गुजरे हजरत अबू बकर सद्दीक। उस वक्त जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया तो आप तमाम सहाबा रो रहे थे। हजरत उमर ने तलवार निकाल ली, हजरत अबू बकर सद्दीक ने कहा कि एक कुरान की आयत पढ़ी और उसके बाद उन्होंने कहा क्या तुम वैसे ही पूजोगे नहीं? ये ना तुम्हारे बाप थे ना तुम्हारे दादा थे, ये तुम्हारे राहबर थे और इस राहबर को वैसे चलना है जैसे उन्होंने हमें सिखाया है। उसके बाद तमाम सहाबा सकूत में हो गए और प्रत्येक घरों में चले गए। उसके बाद हजरत उमर आए, उन्होंने डंडे से हमें बिल्कुल ठीक किया। फिर बाद में कमजोर हुक्मरान आए तो मलूकियत की तरफ आप लोग चले गए। आपकी तमाम सियासत इस वक्त जो है वो मलूकियत की तरफ है, वो मिडिल क्लास से नहीं उठने देगी, कभी नहीं उठने देगी। मिडिल क्लास जब तक खुद स्ट्रांग नहीं होगी, जब तक ये बुत नहीं टूटेंगे, ये बुत हैं, इनको हम अपने सीनों में सजाते हैं, अपने ड्राइंग रूमों में इनकी फोटोएं लगाते हैं। हम मुशरिक नहीं है लेकिन बुत परस्त जरूर है। अब बताइए आप।
नहीं सर मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ, बहुत सारी चीजें जो आपने कही हैं बिल्कुल दुरुस्त हैं। रही बात इसकी कि वहाँ वाकयात क्या हुए तो इस पे तो मैं नहीं जाऊँगा, बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा, क्योंकि ये मैं उस तरफ तो बिल्कुल इशारा नहीं करूँगा। लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि आप जो बात कह रहे हैं, उठना पड़ेगा, साथ उठना पड़ेगा, मिलके काम करना पड़ेगा, ये मैं हमेशा से कहता हूँ। और मैंने कभी भी मुझे हमेशा से एक ही बात लगती है कि हम जब तक दूसरों पर रिलाय करते रहेंगे, तो हमने दूसरों पर रिलाय कर करके अपना तो ये हाल कर लिया ना। आज भी हम अपने दोस्तों वाले की तरफ देख रहे हैं।
बात ये है मेरे जैसे जो लोग हैं इस मुल्क में बहुत कम है जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, लोगों को समझाते हैं, बिठाते हैं, उनसे तहम्मुल से बात करते हैं। कल मैंने आपको अपनी एक नज़म सुनाई थी।
जी जी बिल्कुल सुनाई थी।
उसका जो पहला हिस्सा था उस पर आपने गौर नहीं किया कि सूरज पे घर बनाना फिर वहां छांव तलाश करना।
नहीं गौर किया था।
खड़े भी होना दलदलों पे फिर वो अपने पांव तलाश करना। असल में हम सब मन हैसल कौम दूसरे की तरफ दे रही है, हुकूमत हमें कुछ करके देगी।
सब लोग ऐसा नहीं करते। देखिए रियलिटीज बहुत मुख्तलिफ है, जो आपने बयान की वो रियलिटी, देखिए जो आपने हुजूर मेरी बात सुन लीजिए चौधरी साहब, जो रियलिटीज आपने बयान की ये आपकी हद तक तो बहुत सही है, लेकिन जब आप बाहर निकलते हैं ना तो हमारे जो सोर्सेस डाटा है वो नहीं है जो आपका है, वो 10,000 किस्म के डिफरेंट लोग मौजूद है, 10,000 डिफरेंट किस्म की प्रॉब्लम है। चौधरी साहब मैं लिंग्विस्टिक पढ़ाता हूँ, मैं मेरे पास आई हैव गॉट मास्टर्स इन एनएलपी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, मैं पढ़ाता हूँ ह्यूमन बिहेवियर, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। इसलिए नहीं कह रहा सर, मैं कुछ और बात कह रहा हूँ, मैं आपकी बात इसलिए नहीं कह रहा, मेरी नॉलेज तो कभी वास्ट हो ही नहीं सकती, आई एम स्टिल स्टडिंग, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जितनी एनर्जी हमारे मुल्क में है, हमारी नेशन में है, उतनी एनर्जी मैंने बहुत कम ममालिक में देखी है। फर्क सिर्फ ये है, एक प्रॉब्लम जो हमें मेजर फेस करना पड़ता है, वी कांट डिसाइड व्हाट टू डू, हमको ये नहीं पता हमें करना क्या है, हम किस तरफ जाएंगे,
यही तो उस एनर्जी को,
लेकिन सर, मैं आपको बताऊं उसका रीजन है, सबसे बड़ा रीजन है उसका क्रक्स ये है कि हम सुन नहीं सकते, हमें बोलने का शौक है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम भाई साहब ये है, जिस वक्त हमने सुनना शुरू कर दिया ना, एक दूसरे को सुनना शुरू कर दिया, हमें हौसले खुद जी सर, हमें हौसले खुद ब खुद पैदा होने लगेंगे, खुद ब खुद पैदा होने लगेंगे।
बात ये है कि हमारे अंदर अदम बर्दाश्त है
सर, अग्री बिल्कुल सही कह रहे
हैं, एक अदम बर्दाश्त है, एक हम कंटेनमेंट नहीं सीख रहे, हम थर्ड वर्ल्ड के बंदे हैं, फर्स्ट वर्ल्ड की जिंदगी को पसंद करते हैं, चाहे हमें कर्जा लेना पड़े, चाहे हमें कुछ करना, कर्जा लेना तो बुरी बात नहीं है, लेकिन उस कर्जे को मैनेज करना, उसको अच्छी जगह लगाना और वहां से एनर्जी प्रोड्यूस करना और नीचे तक उसको तकसीम करना,
बिल्कुल दुरुस्त, बिल्कुल दुरुस्त, अग्रीड अग्रीड सर, सर बहुत बहुत शुक्रिया सर, वंस अगेन वंडरफुल कॉल, देखिए बात बिल्कुल सही है, यही तो बात है, आपको याद है मैं आपसे हमेशा क्या कहता हूँ कि ये जो कर्जा लिया गया है, हमने जो लिया है पिछले 75 सालों में जो लिया है वो गया कहाँ, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट चॉइस ऑफ सेइंग, वो गया कहाँ, वो कर्जा गया कहाँ, लगा कहाँ है, किसका एहतसाब, कौन सा एहतसाब, हमारे मुल्क में कोई एहतसाब नहीं होना, मैंने कहा ना दो कवानीन है, एक उनका जिनका है, दूसरे वो जो मैं और आप हैं, कहां पर खुदा ना करे आपको कभी सामना करना पड़ जाए किसी ऐसे मुकदमे का जहां आप अदालत में ना जाएं, आपको लगता है आपको बेल मिलेगी बगैर गए, नहीं मिल सकती, नहीं मिल सकती, फिर अमीर का कानून है वो बिल्कुल अलग है, मुकदमात की पैरवी अलग है, हमारे यहां तारीख पे तारीख क्यों पड़ती है, उसका बड़ा सिंपल रीजन है, अवेलेबिलिटी ही नहीं है, केसेस इतने हैं भुगताएं कैसे, और हमारे यहां केस को ऐसे नहीं डाले जाते, मतलब कोई कुछ भी करके डाल देता है केस, आप जाने आपका काम जाने, आप बेगुनाह साबित करते रहे, किसी ने डिसाइड कर लिया कि आप बेगुनाह हैं, आप कसूरवार हैं, उसने आपके खिलाफ ठोक देना है, कितने ऐसे मैं हजारों लोगों को जानता हूं, हजारों तो खैर ज्यादा हो जाएगा बिकॉज हजारों का मुझे नहीं पता, लेकिन कई अफराद ऐसे हैं, महावतन कह रहा हूं, कई अफराद ऐसे हैं जो जिनको मुझे पता है जिन्होंने कुछ नहीं किया, मेरे दोस्त हैं सारे बनी साहब, वो अक्सर इन लोगों की मदद करते हैं, अक्सर 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 गलत गलत मुकदमों के अंदर लोग जो होते हैं वो डले हुए होते हैं, बेचारों को तीन तीन चार चार पांच पांच साल हो जाते हैं, उनकी बेगमात, उनकी उनके बच्चे, उनकी माएं सारे भाई के पास आती हैं और कहती हैं खुदा का वास्ता सारे भाई मेरी मदद कर दें, इतनी इतनी तथ्य मैंने देखी, इतनी इतनी फाइल्स देखी, हजारों की तादाद में, दिस इज हु वी आर, जब तक हम ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे गलती कहां है, हम उस गलती को सुधार नहीं सकते। एनीवेज आज तो बात शुरू फिर वही हो गया, कल मैं आई प्रॉमिस यू कल कुछ ऐसा शो करेंगे जिसमें थोड़ा सा फन हो, बिकॉज मुझे लगता है कि अच्छा बाय द वे सुमेरा दादी बन गई हैं, आई थिंक या शी इज अ ग्रैंड मदर नाउ, एंड उन्होंने मुझे कहा था कोई गाना चला देना मेरे पोते के लिए, या एम आई राइट, पोते के लिए ना, तो इट इज वेरी गुड, such a young dadi, not really, but yeah. So Sumera, if you're listening to me, I'm gonna play this for you, and I hope the young one is always very well taken care of, and Allah Taala aap logo bahut khush rakhe, bahut sari khushiyan de meri taraf se, hum sab ki taraf se, this is going out to you and him, you didn't tell me his name, so I've got no idea, I'm playing a song that I like, so this is going out to you sir, if you whenever you grow up, तो आपको पता होगा कि हमने आपके लिए गाना चलाया था, बट वेलकम टू द वर्ल्ड एंड यू नो लेट्स सी क्या होता, बट मेरी तरफ से बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार आप सबके लिए, खास तौर पे उस छोटे से बच्चे के लिए जो अभी अभी तशरीफ लाए। All right, gee, once again, welcome back, welcome back. And yeah, all right, gee. मुझे अपनी मेरे गाने किसी ने रख दिया उठा के यहाँ पे. Seriously? और गाना भी कौन सा वाला है? I guess लाला का ये गाना. कहीं से भी लगा दूँ, कहीं से लगा दूँ. थोड़ा सा सुन लेते हैं, उसके बाद चेंज कर दूँगा. Not bad actually. Not bad. Not bad. एक अंतर और सुन ले. मुझे खुद अच्छा लग रहा है. I don't know why. हालांकि गाया हुआ तो मेरा ही है, पर कैसे अच्छा लग रहा है ये भी नहीं पता मुझे. बट ये लाइव था शो पे. अच्छा मुझे पता नहीं क्यों लाला नजर आ गए, तो मैं लाला का ही गाना लगा रहा हूँ. I know, it's an old song, but I love it. थोड़ा सा पानी कर लेते 10 मिनट. अच्छा लाला के मुझे सारी चीजें बहुत पसंद है, लेकिन कि ये गजल मुझे बहुत पसंद है. बेदर्द ढोला ये मैं नहीं करंदा, तेरे खूते आया सावा तमाकू, तेरे खूते आया सावा तमाकू, असा जग लुटेरे तुसा लुटिया साकू, बेदर्द ढोला ये मैं नहीं करंदा, बेदर्द ढोला डिग पई जंजीरी, बेदर्द ढोला डिग पई जंजीरी, तेरे पीछे सजना मन लई फकीरी, बेदर्द ढोला इव नहीं करींदा. और लाला की बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद है. उनमें से एक चीज ये है जो इब्ने इंशा की है, और ये बड़ी कमाल है. सब माया है, सब ढलती फिरती छाया है, इस इश्क में हमने जो खोया जो पाया है. सब माया है, सब माया है, सब माया है, मालूम हमें सब कैसमिया का किस्सा भी, सब एक से हैं ये रांझा भी ये इंशा भी. फरहाद भी जो एक नहर सी खोद के लाया है, सब माया है, सब माया है. जो लोग अभी तक नाम वफा का लेते हैं, वो जान के धोखे खाते हैं, धोखा देते हैं. हाँ ठोक बजाकर हमने हुक्म लगाया है, सब माया है, सब माया. जब देख लिया हर शख्स यहां हर जाई है, फिर शहर से दूर एक कुटिया हमने बसाई है, और उस कुटिया के माथे पे लिखवाया है, सब माया है, सब माया है. वो लड़की जो चांद नगर की रानी थी, उसकी अल्लड़ आंखों में हैरानी थी, आज उसने भी पैगाम यही भिजवाया है, सब माया है, सब माया है. जो तुमने कहा है, फैज ने जो फरमाया है. माया मतलब पैसा है, ये इब्ने इंशा की नज्म है और मुझे बहुत पसंद है. पता नहीं क्यों दिल चाह के चला दूं. इसको सुनिए, बहुत डेप्थ है इसमें. हम भूल जाते हैं कहीं ना कहीं इसका भी तो किस्सा है. और ये जो शेर है स्पेशली इसको सुनिएगा, ये बड़ी कमाल बात है, बहुत कमाल बात है. सुनिएगा, यहां लगता अंदर. जब तक हम, खैर जाने दो, अब सबको मुझसे ज्यादा पता क्या कहूं. सुनिए, रहिए अब ऐसी जगह चलकर जहां कोई ना हो, हम सुखन कोई ना हो और हम जुबां कोई ना हो. बेदरो दीवार सा एक घर बनाना चाहिए, कोई हमसाया ना हो और साहिबा कोई ना हो. पड़ी अगर बीमार तो कोई ना हो तीमारदार, पड़ी अगर बीमार तो कोई ना हो तीमारदार, और अगर मर जाइए नोहा ख्वा कोई ना हो. गालिब ने कहा था, कमाल बात. यही बात इंशा भी कह रहे हैं. मेरी तरफ से सलाम.